मान्या के मर जाने के बाद प्रतिभा मौका देखकर वहां से भाग गई थी। इस वक्त वो जयपुर में मौजूद थी और एक बड़े से महल जैसे दिखने वाले घर में थी। उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो उम्र में लगभग 55 साल के आसपास था। वो आदमी कोई और नहीं, तेज सिंह राणावत का छोटा भाई अभय सिंह राणावत था। एक वक्त ऐसा था जब युग ने राणावत हवेली के अंदर घुसकर उन्हीं की बेटी को उनकी आंखों के सामने मार डाला था। बस तभी से वो राणा फैमिली और युग को खत्म करने की फिराक में था। आज प्रतिभा राणा मेंशन से सुरक्षित भागकर उसके सामने खड़ी हुई थी तो ये अभय की वजह से ही था। उसी की मदद के चलते वो राणा मेंशन में पहुंची थी और मान्या को सही दवाइयां देकर उसे ठीक कर पाई थी। मान्या के मर जाने के बाद भी अगर अभय सिंह राणावत ने प्रतिभा की मदद नहीं की होती तो वो वहां कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। प्रतिभा इस वक्त अभय सिंह राणावत के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। उसने सिसकती आवाज में कहा, मैं हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मुझे बहुत कुछ पता चला है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उस परिवार को खत्म होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं युग राणा को खत्म होता देखना चाहती हूँ। उनसे जुड़े हरेक शख्स की मौत ही मेरी आखिरी इच्छा है। अभय सिंह ने अपनी मूछों को ताव दिया और गर्दन टेघी करके एक दिशा में घूरते हुए बोला, सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी उसे खत्म होते हुए देखना चाहते हैं और पिछले 27 सालों से तैयारी कर रहे हैं। उसने न केवल हमारे भाई के परिवार को खत्म कर दिया बल्कि उनके अंश को भी लेकर चला गया। प्रतिभा ने हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये बात उसे पहली बार पता चली थी। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, आपके परिवार का अंश, क्या वो राणा फैमिली में है? मैंने वहां किसी और को नहीं देखा। वीर, अभय सिंह ने तेज आवाज में कहा, वो लड़का जो युग राणा के राइट हैंड का बेटा है, असल में वो उसका बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई और भाभी का बच्चा था जिसे वो लड़की बस पैदा करने वाली थी। युग ने मेरे भाई भाभी को मार डाला और उस लड़की को अपने साथ ले गया। वो वीर सिंह राणावत है। प्रतिभा ने राणा मेंशन में कई बार वीर को देखा था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वीर राणावत फैमिली का वारिस हो सकता है। अगर वो राणावत फैमिली का है तो उस घर में पालतू नौकर बनकर क्यों रह रहा है? आखिरी बार मासी की लाश हटाने के लिए भी वही वहां पर आया था, प्रतिभा ने हैरत भरे लहजे के साथ पूछा। क्योंकि वो अपनी सच्चाई से अनजान है। वो जिसे अपना समझ रहा है वे उसके ही माँ बाप के कातिल हैं। जिस दिन सच उसके सामने आएगा वो खुद उन्हें छोड़ देगा, अभय सिंह ने पूरे विश्वास के साथ कहा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, प्रतिभा बोली। वो काफी डरी हुई लग रही थी, साथ ही उसके कपड़ों और हाथों पर भी खून लगा था। अभय सिंह ने एक नज़र प्रतिभा की तरफ देखा और फिर नरम लहजे में कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, जाओ जाकर पहले थोड़ा आराम करो, तुम्हारे रहने के इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रतिभा के पास बताने के लिए काफी कुछ था। वो जानती थी कि वो जितनी ज्यादा जानकारी मिस्टर राणावत को देगी उतना ही उनका फायदा होगा। प्रतिभा अभी अभय से बात करना चाहती थी, उसका चेहरा भी यही बता रहा था, लेकिन अभय ने सिर हिलाकर कहा, रात हो गई है, खाना तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा, आराम से सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। और तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हारी हर बात को सुना जाएगा और तुमने हमारी जो मदद की है तो हम तुम्हारी वफादारी को हमेशा याद रखेंगे। प्रतिभा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां मौजूद हाउस हेल्पर के साथ जाने लगी। उसके जाते ही अभय राणावत ने अपने खास आदमी धर्म की तरफ देखा। धर्म, इस लड़की पर नजर रखना, ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है, तो हम इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। हम इसकी सिक्योरिटी और ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपते हैं, अभय ने धीमी लेकिन रौबदार आवाज में कहा। जी हुकुम, धर्म ने उसके आगे सिर झुकाया और वहां से चला गया था। वहीं उसके जाते ही अभय के चेहरे के भाव बेहद सर्द हो गए थे। उसने अपनी सांसों के साथ कहा, पिछले 27 सालों से हम इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। युग राणा, तुम्हें खबर भी नहीं कि तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन पैदा हो गया। वो दिन दूर नहीं जब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे और तुम्हारी जगह अभय सिंह राणावत लेगा। अभय वहां से उठकर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और तारा मौलिक के घर पर मौजूद थे। तारा का बस चलता तो वो बस वहां से मैप्स लेकर वापस आ जाती, लेकिन मौलिक ने भी जिद पकड़ ली थी कि जब तक वे दोनों खाना खाकर नहीं जाएंगे तब तक वो उन्हें वे मैप्स नहीं देने वाला है। मौलिक, तारा और ध्रुव इस वक्त डाइनिंग टेबल पर थे और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तारा खाना खाने के बजाय बस चम्मच के साथ खेल रही थी। मौलिक और ध्रुव की नजरें उस पर टिकी हुई थी। उन दोनों के चेहरे पर ही झुंझलाहट भरे भाव थे। मौलिक ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9 बजने को आए थे और वे पिछले आधे घंटे से डाइनिंग टेबल पर थे। तारा ने एक निवाला तक नहीं खाया था। मुझे यहाँ पूरी रात बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम इसे खत्म नहीं करोगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मौलिक ने सख्त आवाज में कहा। वो उठा और सारा खाना वापस गर्म करने के लिए चला गया था। मौलिक के जाते ही ध्रुव ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, अपने साथ साथ मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो। पता है ना डैड हॉस्पिटल में है और मैं यही सोच रहा था कि ये काम एक घंटे में निपट जाएगा। तुम्हारी वजह से बेवजह हमें टाइम लग रहा है। हाँ तो मैंने तो कहा नहीं था कि अपने डैड को छोड़कर यहाँ मेरे साथ आओ। मुझे इस घर का कुछ नहीं खाना है। मेरे लिए इस घर का खाना जहर बराबर है, तारा ने ध्रुव से नजरें फेरते हुए कहा। तो जहर समझ कर खा लो या फिर ये सोच लो कि इस वक्त किसी होटल में बैठी हुई हो, ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा। तारा उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, लिसन तारा, आई एम वेरी सीरियस। ये दूसरी बार है जब मौलिक सर खाना गर्म करने के लिए गए हैं। तुम उन्हें बेवजह परेशान कर रही हो। अगर इस बार तुमने कोई ड्रामा किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे मुंह में ये खाना ठूसने वाला हूँ। ध्रुव के फिर से धमकाने पर तारा ने उसकी तरफ आंखें घुमाकर देखा। उसने बेपरवाही से कहा, बेशक कर सकते हो, जबरदस्ती करने के अलावा तुम्हें आता क्या है। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ, तो यही सही। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जबरदस्ती करना क्या होता है, ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा। वो तारा के इस तरह नखरे दिखाने पर बुरी तरह परेशान हो गया था। ध्रुव अपनी जगह से उठा। तारा उसे रोकने के बजाय आंखों में चुनौती लिए उसे देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर ध्रुव क्या करने की सोच रहा है। ध्रुव किचन के अंदर गया और मौलिक से बोला, क्या उसका खाना खाना इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, और ये सब मैंने उसके लिए बनाया है, मौलिक ने सीधे लहजे में जवाब दिया। ठीक है फिर, मेरा तरीका कुछ भी हो इसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। वो जानबूझकर आपको और मुझे परेशान कर रही है क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया कि हमें उसकी जरूरत है। कोई इतना इरिटेटिंग और अनोइंग कैसे हो सकता है, ध्रुव ने चिड़ भरे स्वर में कहा। ध्रुव ने खाना उठाया और बाहर जाने को हुआ, तभी मौलिक ने पीछे से संजीदा स्वर में कहा, रुको ध्रुव। मौलिक के रोकने पर ध्रुव वहीं पर रुका और उनकी तरफ पलटा। मौलिक ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे समझाते हुए कहा, क्या प्लीज तुम उसके साथ प्यार से पेश नहीं आ सकते। मिस्टर राणा ने बताया था कि तुम उससे प्यार करने लगे थे।
आपको लगता है सर आपकी बेटी की हरकतें प्यार करने लायक हैं, ध्रुव ने आंखें घुमाकर कहा। मुझे डीसेंट लड़कियां पसंद है और वो इसलिए मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि वो मेरे सामने डीसेंट बनने का दिखावा कर रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका रियल बिहेवियर अभी बाहर निकल कर आ रहा है और वो मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्यार पर्सनालिटी देखकर नहीं होता है, मौलिक ने कहा। मैं उसकी इस पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और अब तो मुझे खुद पर हैरानी होती है कि मैंने उस जैसी लड़की से प्यार किया। एक बार के लिए पर्सनालिटी और बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं, लेकिन उसने मुझे हर बार धोखा दिया है। मेरी मॉम को शूट तक कर दिया था उसने। गलती भले ही उसकी ना रही हो, लेकिन मेरी फैमिली ने उसे अपना माना था, फिर भी उसने धोखा दे दिया। मैं उसकी इस गलती को नहीं भूल सकता हूँ। आई होप कि आप आगे से हमारे रिलेशन के बीच में नहीं आएंगे, ध्रुव ने काफ़ी बेरुखी से जवाब दिया और किचन से बाहर आने लगा। बोलते वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी और तारा को बाहर सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ना जाने उसे ये सुनकर बुरा क्यों लग रहा था कि ध्रुव अब उससे प्यार नहीं करता। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग भी मुझे बार बार धोखा दे रहे हो, मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं क्यों डीसेंट बनकर रहूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम्हारे हिसाब से बिहेव करने वाली हूँ, ध्रुव राणा, तारा ने गुस्से में दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ाकर कहा। ध्रुव और तारा में किसी तरह का झगड़ा ना हो जाए ये सोचकर मौलिक भी ध्रुव के पीछे पीछे बाहर आ गए थे। इस बार ध्रुव तारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बजाय उसके पास वाली चेयर पर बैठा था। उसने तारा को ज़बरदस्ती खाना खिलाने के बारे में पूरा सोच लिया था, लेकिन तभी तारा ने बिना कुछ बोले ध्रुव के हाथों में पकड़ी हुई प्लेट छीनकर अपने सामने रख ली थी। ध्रुव ने अभी जो भी कहा उसे सुनकर तारा को बहुत बुरा लगा था। उसने अपनी हाथ की मुट्ठी बांध रखी थी और बिना उनकी तरफ देखे धीरे धीरे खुद से खाना खाने लगी थी। अगर पहले ही ये कर लेती तो काम जल्दी निपट जाता, ध्रुव ने तंज भरे लहजे में कहा और अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा काम जल्द से जल्द हो और तुम्हारा मुझसे जल्दी ही पीछा छूट जाए, तारा ने भारी आवाज में कहा। उसके शब्दों ने ध्रुव और मौलिक दोनों को चौंका दिया था। तारा भले ही खाना खा रही हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर ध्रुव की भूख पूरी तरह मर गई थी। ना जाने क्यों उसे तारा की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। आप लोग कंटिन्यू कीजिए सर, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी आपकी यही शर्त थी कि आपकी बेटी आपके घर पर आए और खाना खाकर जाए। जब हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं बाहर हूँ, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा। ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकल रहा था। मौलिक ध्रुव को रोकना चाहता था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वो तेज कदमों से चलते हुए बाहर चला गया था। मौलिक ने तारा की तरफ देखा जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मौलिक ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दोनों के दिल में ही प्यार है और उसे ये दोनों नफरत और जिद के पीछे छुपा रहे हैं। तारा, तुम हमेशा से इतनी जिद्दी क्यों हो? और ध्रुव, तुम्हें भी ये समझना होगा कि अगर दूसरों के शब्द तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं तो तुम्हारे शब्द भी उन्हें बुरा महसूस करवा सकते हैं। मौलिक बिल्कुल शांत हो गया था।
कुछ देर में जब तारा का खाना हो गया तो वो अपनी प्लेट किचन में रखकर आई और आते ही मौलिक की तरफ देखकर बोली, अगर आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों तो क्या अब हमें वो मैप्स मिल सकते हैं? स्टडी रूम में आ जाओ और ध्रुव को भी बुला लो, मौलिक ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। मैं उसे बुलाने नहीं जा रही हूँ, तारा ने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो ध्रुव को बुलाने जाने वाली है। उसे ध्रुव से किसी तरह की बहस नहीं करनी थी। वो मेरा नहीं तुम्हारा हस्बैंड है, नहीं बुलाना तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं स्टडी रूम में हूँ, मौलिक ने बेरुखी से कहा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। शायद उन दोनों के बीच की दूरियां और गलतफहमी दूर करने का यही रास्ता था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बिताने को मिले। मौलिक ने भी यही सोचा और जबरदस्ती तारा को ध्रुव को बुलाने के लिए भेज दिया था, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके बीच थोड़ी दूरियां कम हों। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, प्लीज पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और देखते हैं कि मौलिक की ये कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। अगले पार्ट पर मिलते हैं।